नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को और भी अधिक पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून में साइकिल सुविधा शुरू की। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। जीएसटी राजस्व संग्रह जनवरी में 1,95,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.3% अधिक है। और प्रदेश में वसंत पंचमी का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशांत सकलानी, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को और भी अधिक पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून में साइकिल सुविधा शुरू की है। इस पहल से कोर टीम, वॉलंटियर और सभी दर्शकों को खेल परिसर में आसानी से आवाजाही करने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य केवल प्रदूषण को कम करना ही नहीं, बल्कि लोगों को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। अब दर्शक और वॉलंटियर खेल परिसर के विभिन्न स्थलों तक साइकिल से आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे ट्रैफिक और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इस पहल से न केवल राष्ट्रीय खेल को एक नया रूप मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड को पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद खेल आयोजनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी। सरकार का यह अभिनव प्रयास खेलों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने की प्रेरणा देगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। आज बसंत पंचमी के अवसर पर टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित राजदरबार में राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने पंचांग की गणना करने के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक के लिए तिलों का तेल 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा। उसी दिन राजदरबार से गाडूगढ़ा तेल कलश यात्रा शुरू होगी।
मैं आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल, राजपुरोहित, आज बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की जो तिथि है उसकी घोषणा आज राजदरबार में महाराजा मनिंदर शाह जी ने की है। और जो कपाट खोलने की जो तिथि है वो 4 मई को घोषित हुई है। 4 मई को महाराजा साहब की जन्म कुंडली के आधार पर उत्तम मुहूर्त और बद्रीनाथ जी के नाम से भी जो राशि बनती है उससे भी उत्तम मुहूर्त बना है। उस दिन रवि कुख्य योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसलिए 4 मई को बद्रीनाथ भगवान के कपाट दर्शनार्थ के लिए खोले जाएंगे सुबह प्रातःकाल 6 बजे। और 22 अप्रैल को जो भगवान की पूजा अभिषेक के लिए तेल जाता है वो गाडू उत्सव यही महल में होगा। और वो जो गाडू कलश है उसको निमरी समाज बद्रीनाथ जी के लिए ले जाएंगे।
पंच केदारों में से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट इस वर्ष 18 मई को ग्रीष्म काल के लिए खोले जाएंगे। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आज चमोली जिले के गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि तय की गई। कपाट खुलने की प्रक्रियाओं के तहत भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह को 14 मई को गर्भगृह से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ विराजमान होगी। 16 मई को भगवान रुद्रनाथ की डोली रुद्रनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और 18 मई को प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज 2 नए नेशनल रिकॉर्ड दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के वैष्णव शाहजी ठाकुर ने पुरुषों की 102 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच में 160 किलोग्राम उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जगदीश विश्वकर्मा के 157 किलोग्राम के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। वहीं मध्य प्रदेश की आशी चौकसी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला वर्ग में 598 स्कोर कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्होंने 2023 ISSF नेशनल चैंपियनशिप में शिफत कौर समरा के 594 रिकॉर्ड स्कोर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पदक तालिका में सर्विसेज 14 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है, वहीं कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड 1 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर है। यह समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस वर्ष जनवरी महीने में वस्तु और सेवा कर GST के रूप में 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है। यह जनवरी 2024 की तुलना में 12.3% अधिक है। इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संग्रह 36,077 करोड़ रुपए और राज्य वस्तु तथा सेवा कर 44,942 करोड़ रुपए है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह की राशि 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक और उपकर 13,412 करोड़ रुपए है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा कल पेश किए गए बजट को संतुलित और समावेशी बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, खास तौर पर मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी गई।
ये बहुत ही संतुलित, बहुत ही समावेशी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी बजट में कह सकता हूँ। मध्यम वर्गीय की बात करें, कृषि की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें, पर्यटन की बात करें, और उसके साथ वर्गों की बात करें, चाहे महिलाओं का हो विषय, चाहे युवाओं का विषय हो, या फिर रक्षा की बात करें, किसी भी मंत्रालय के या उनके विभाग की बात करें, सभी में एक अच्छा प्रावधान करने का काम, एक अच्छा बजट देने का काम माननीय निर्मला सीतारमण जी ने किया है। मैं उत्तराखंड की इस पावन धरती से मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, उनका अभिनंदन कर रहा हूँ।
वित्त मंत्री ने उत्तराखंड के बजट को लेकर कहा कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ संवाद किया और बजट के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सुझावों को भी इस बजट में शामिल किया जाएगा।
हम लोग जब बजट पेश करते हैं उससे पहले तमाम हितधारकों से हम लोग संवाद करते हैं। इसके अलावा हम लोग सामान्य जनता से भी उनके सुझाव मांगते हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से 9 फरवरी तक सभी लोगों को आमंत्रण दिया है कि आप आइए, अपना बजट के बारे में और जो अच्छे सुझाव दीजिए। और हितधारकों के साथ मेरा बैठना हुआ था 31 जनवरी को देहरादून में, और 10 विभिन्न क्षेत्रों के, जिसमें पर्यटन से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कृषि से संबंधित, उद्यान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और उद्योगों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित, ऐसे 10 विभिन्न सेक्टर्स से मैंने लोगों को बुलाया था और उनसे संवाद किया था। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उनके आए हैं, और अब ये बजट हमारा, केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है, ये हमारे बजट के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। और हमारा मकसद भी है कि पूरे प्रदेश और प्रदेशवासियों के सर्वांगीण हित के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम ये बजट प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।
प्रदेश में वसंत पंचमी का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की। राज्य के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जहां पूजा अर्चना की, वहीं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और सरस्वती पूजन भी किया गया। चंपावत जिले में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, सरस्वती पूजन, विद्यारंभ संस्कार और जनेऊ संस्कार आदि किए गए। उधर चमोली जिले के ग्रामीण अंचलों में लोगों ने वसंत पंचमी पर्व को परंपरागत ढंग से मनाया। ग्रामीणों ने अपने देवी देवताओं की पूजा के बाद सुख समृद्धि का प्रतीक जौ की बाली को अपने घर के द्वार पर लगाया। युवतियों का कहना है कि इस त्योहार के दिन वे अपने परंपरागत लोकगीत झुमेला, चौफुला व चाचड़ी गाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं।
मेरा नाम नविता है। प्रसिद्ध त्योहार है बसंत पंचमी। इस बसंत पंचमी में हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं और जो हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध गाने हैं, झुमेलो, चौफिला, चाचड़ी इत्यादि, सभी महिलाएं इकट्ठा होके वो चीजें अपने चौक और आंगन में उसे गाते हैं। और उस दिन काफी हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बसंत पंचमी में, जो आज की जनरेशन में नहीं कर पाते हैं।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बसंत पंचमी पर लोगों ने विद्या, बुद्धि और कला की देवी माँ सरस्वती का वंदन कर पीले वस्त्र भी धारण किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को और भी अधिक पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देहरादून में साइकिल सुविधा शुरू की। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। जीएसटी राजस्व संग्रह जनवरी में 1,95,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.3% अधिक है। और प्रदेश में वसंत पंचमी का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।